الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة الاحقاف آیت نمبر 21 سے لے کے اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے آیت نمبر 35 تک. انشاءاللہ تعالی آج کے لیسن میں ہم قوم ہود کے بارے میں، یعنی عاد جو حود علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جنات کی بھی کچھ باتیں ہم آج جانیں گے. وذکر اور ذکر کیجئے، جب بھی آئے گا ذکر کیجئے، یا اس جب آتا ہے تو یاد کریں، یا ان کو بتائیں، ان کو ان کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے ذکر کریں. کس کا؟ اخو آدم، آد کے بھائی کا. آد کون تھے؟ ایک قوم گزری ہے، نوح علیہ السلام کے بعد کی یہ قوم تھی، اور اس قوم کے پاس بہت یعنی فراوانی تھی دنیاوی نعمتوں کی. اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں اس قوم کا ذکر کیا ہے. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. تو یہ قوم عاد تھی جن کے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے بیٹے ارم، ان سے یہ اولاد تھی. اوس اس کے بعد تھا اور اس کے بعد عاد. تو عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یہ ان کا نسب بنتا ہے. تو ان کا نسب پیچھے جا کے نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا تھا نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کے یہ بیٹے جو کہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، ان میں سے ایک سام بھی تھے، اور ان کی اولاد میں سے یہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دنیاوی شان و شوکت دی ہوئی تھی، دنیاوی بہت ریل پیل تھی ان کے پاس، بہت ساز و سامان تھا، بہت فلرش کیے تھے دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. یہ قوم ان کے بھائی کہا گیا ہود علیہ السلام کو. تو بھائی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ بھائی یہ ان کے دین میں بھائی نہیں تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں دینی بہن بھائی ہوتے، بلکہ یہ بھائی تھے ان کے نسب میں، یعنی انہی کے قوم میں سے تھے. ہر نبی اپنی قوم میں سے ہی آیا ہے، آپ دیکھیں سوائے لوط علیہ السلام کے، ہر نبی کو اس کی قوم میں ہی بھیجا گیا. تو چونکہ یہ اپنی اسی قوم میں سے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ ان کے بھائی. تو یہ لوگ ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اس انذر قومہ، جب اس نے انذار کیا. انذار کہتے ہیں ایسے خبردار کرنے کو جس میں ہمدردی ہوتی ہے، جس میں خیر خواہی ہوتی ہے. یعنی ایسے نہیں کہ وہ ان کو ڈانٹنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بلکہ خیر خواہی کے ساتھ، جب کوئی کسی کو یا ہمدردی کے ساتھ کسی کو وارن کرتا ہے اس کی بھلائی کے لیے، تو اس کو انذار کہتے ہیں. اسی لیے انبیاء نذیر کہلاتے ہیں، کہ انہوں نے انذار کیا، وہ نذیر ہیں. خیر خواہی کے ساتھ ڈرانا ایک ہوتا ہے، جیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ آ جائے گا، پکڑ لے گا تمہیں جن سے، ایک پتہ نہیں کن کن چیزوں سے، وہ انذار نہیں کہلائے گا. ہم ویسے اس کا ترجمہ ڈرانا ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن اصل ہے خبردار کرنا ہمدردی کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے والدین اپنے بچوں کو خبردار کرتے نا کہ بیٹا اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو دیکھو اس کا بہت بڑی سزا ہے، تو یہ ہے انذار کرنا. ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اندر خیر خواہی ہے، ان کے بھائی کہا گیا، اور بھائی بھی جو ہوتا ہے وہ بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے. देखिए, जो दीन की दावत देना है ना, इस रास्ते में खैर ख्वाही होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के अंदर दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं कि मैं इसको बचा लूं किसी तरह, ये कहीं ये ना हो कि ये आग में जा पड़े, बुरे अंजाम से दो चार हो, ये जब तक हमदर्दी और तड़प ना हो ना, तो दीन की दावत का काम मौसर नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव तभी होगा जब आपके अंदर हमदर्दी हो। अगर आप सिर्फ अपनी धाक बिठाने के लिए कि मैं दूसरों को बताऊं कि मेरे पास बहुत इल्म है, ये तुमने क्या पहना हुआ, तुम्हें नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तुम्हें नहीं पता कि कुरान में ये लिखा, सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चले कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं और मुझे बहुत आता है, मेरी बड़ी समझ है और मैं कितनी बड़ी आलिमा हूं, अगर ये ठोंस जमानी है, या फिर दूसरों की बस बुराइयां करनी कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैं कितनी नेक हूं और आप लोग कैसे गलत गलत काम करने लगे, मैं तो ये खैर ख्वाही नहीं है। खैर ख्वाही वो तड़प होती है जैसे एक माँ और बाप को अपनी औलाद से होती है। जब आप अपनी औलाद को तन्बीह करते हैं, वॉर्न करते हैं, तो उसके अंदर आपको देखा है आपने कि आपको धाक बिठाना मकसद नहीं होता कि मैं इनको बताऊं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ या मेरे पास बहुत इल्म है या तुम लोग कितने बुरे हो और मैं कितनी अच्छी हूँ, ये नहीं होता। उसके अंदर वाकई हमदर्दी होती है। और हम देखिए पिछली आयात में पढ़ चुके हैं वालदैन के बारे में और किस तरह उनका एहसान औलाद के ऊपर होता है, तो वाकई वालदैन से ज्यादा कोई इंसान का हमदर्द जमीन के ऊपर नहीं होता इंसानों, क्योंकि वालदैन कभी भी अपनी औलाद के ऊपर बेजा कोई चीज नहीं करेंगे, चाहेंगे कि हमेशा उनकी खैरख्वाही ही उनको मकसूद होती है। तो यहाँ पे भी हमने एक बात तो पहले पढ़ ली ना कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि काफरों को जहन्नुम में धूप धों झोंक दिया जाएगा, तो वो जो दुनिया में उन्होंने अपनी ऐश व आराम किए थे, उनसे फायदा उठाया था, बस वो उनको मिल गया और उनको कहा जाएगा आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अब तुम्हारे लिए जिल्लत वाला अजाब है क्या। तो जो दुनिया के अंदर नेमते इनको आद को मिली नहीं थी, ये नेमते पा के ये समझे कि हमें बस हम कितने अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि हम जैसा कोई है ही नहीं। उनको ये लगता था कि हमारी जैसी कौम तो दुनिया के अंदर आई ही नहीं, हम जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब तकब्बुर उनके अंदर इतना ज्यादा था, और जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता ना, तो वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता, वो फिर कुछ समझने को तैयार नहीं होता, और यही इस कौम का प्रॉब्लम था। अल्लाह ताला ने उनको वाकई बहुत कुछ से नवाजा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिताद, अब ऐसी कौम थी, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है जैसी वो थी, जितनी वो जबरदस्त कौम थी ऐसी मिसाल नहीं मिलती दुनिया के अंदर, कि वो कितनी उनकी जिस्मानी भी ताकत थी और समझ बूझ भी बहुत थी, और ये इसी चीज ने उनको ये दिमाग में डाल दिया कि पता नहीं हम क्या चीजें, हम कितनी बड़ी चीजें, हमें तो किसी के सुनने की जरूरत ही नहीं। जबकि उनके जो पैगंबर थे उनके पास सिर्फ हिदायत का एक पैगाम लेकर आए थे, जिस पैगाम में उनकी ही खैर ख्वाही थी। तो इद अंजर कौमहू, जब उसने अपनी कौम को इंजार किया, तो आपने क्या सीखा अभी तक ये बात में, कि देखें जब आप किसी को समझाने लगे, औलाद को नहीं मैं कह रही, क्योंकि औलाद को आप हमेशा खैरख्वाही से ही समझाएंगे, ये तो डन है, जब आप किसी को समझाने लगे बाहर वाले को, तो उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए, हमदर्दी मकसूद होनी चाहिए, उसकी खैरख्वाही मकसूद होनी चाहिए, अपनी धाक नहीं। और आप देखेंगे जब ये आपके अंदर आएगा, तो आप खुद ब खुद आपकी बात आपका अंदाज बदल जाएगा, उसमें बहुत नरमी होगी, उसके अंदर बहुत खैरख्वाही होगी, और दूसरा सुनेगा भी फिर। और फिर हम देखते हैं कि आहकाफ में जो कौम थी, आहकाफ क्या है, इस सूरत का नाम सूरत अल आहकाफ, किससे हकफ कहते हैं, लंबे टीले को जो रेत का बना हुआ होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता लेकिन रेत का होता है, और वो रेत ही होती है जो मतलब उसके अंदर पूरी, आपने देखा जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ एक डिफरेंट उसके होते हैं, मतलब उसके अंदर वो रेत वैसे नहीं होती, लेकिन जो अकाफ होते हैं वो रेत के टीले होते हैं, और ये इलाका कहाँ है आजकल? ओमान और यमन के दरमियान है, बिल्कुल रेगिस्तान डेजर्ट है, मिट्टी धूल उड़ रही है वहां पे। सहराए आजम अदहना कहते हैं इसको। कहीं दूर दूर भी यहाँ पे आबादी नहीं है आज तक, अंदाजा कीजिए। और ये इलाका ऐसा है कि इसकी बहुत बाद में जाके इसकी जब इन्होंने यानी जैसे आसारे कदीमा के लिए करते हैं ना खुदाई की, तो सैटेलाइट से तस्वीरों के जरिए इन्होंने देखा कि कौन सा इलाका है। और फिर वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई चीज जो है ना ऐसे रह नहीं सकती, हर चीज जो है वो रेत के अंदर दब जाती है। कोई चीज सालिम नहीं रहेगी, रेत जैसे उसको निगल जाती है। अल्लाह अकबर, ऐसी वो जगह है आज भी। और दूर दूर तक रेत के टीले फैले में हैं। यही जगह थी जहां पे कौमे आद बसती थी। और अब भी जब उन्होंने आसारे कदीमा में निकाला खोदा, तो जाहिर है ये तो मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नीचे सतून है, बड़े बड़े पिलर्स, बड़े बड़े पिलर्स हैं। अब देखें कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना, इरम ज़ातिल इमाद, बड़े पिलर्स वाले। इरम इनका जद्दे अमजद का नाम था ना। तो सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो इनकी बताई हैं बातें इतने हजारों साल पहले की, वो वाकई जब आज उन्होंने खोदा है तो उनको पता चला 1990s में कहीं ये खुदाइयां की गई थी कि ये इन मकामात की तस्वीरें उन्होंने ली और देखा कि यहाँ पे तो टीले हैं बहुत और कोई जा ही नहीं सकता वहां। अल्लाह ताला ऐसी जगहों को ना भी इबरत का निशान बना देता है। तो उन्होंने कहा कि 8 सतून उन्होंने दरियाफ्त किए हैं कि नीचे सतून है, कोई कोई किला भी है इस तरह से है, नीचे ही है, बस सब कुछ दब चुका है। और किला ऐसा है, दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं और टावर्स ही टावर्स हैं किनारों पे, और टावर्स भी बहुत बुलंद। हम पढ़ चुके हैं कि ये लोग बहुत वो बनाते थे, जिसको कहें यादगारें, जिसको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स बहुत बनाते थे। और क्योंकि उनको अपने आप को दिखाना था ना, जब मॉन्यूमेंट्स लोग बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने आप को दिखाना होता है कि हमने कितना बड़ा पता नहीं क्या पा लिया है, और हम कितनी बड़ी कौम है, और हम क्या चीज़ है। तो इसके लिए वो मॉन्यूमेंट्स बना के रखते हैं ताकि यादगारें हों, हमारा पता चले हम क्या थे। तो खैर, ये वो कौम थी जिनको इंतजार करने के लिए अल्लाह ताला ने हूद अलैह सलाम को भेजा। वक़द खलत नुदुर मिन बैन यदैही व मिन खल्फिही, और तहकी गुजर चुके खबरदार करने वाले इससे पहले और इसके पीछे, इनके बाद भी आए खबरदार करने वाले, इनसे पहले भी लोग आए थे, यानी पैगंबर आए, इनसे पहले नूह अलैह सलाम आए थे और इनके बाद भी आए। तो यानी हूद अलैह सलाम को इनके पास पहले पैगंबर नहीं थे, जाहिर है मैंने आपको अभी इनका शजरा नसब बताया, तो बहुत जमाना पहले कोई नूह अलैह सलाम नहीं गुजरे थे। अब देखें, ये इलाका ऐसा था कि उस वक्त बड़ा सरसब्जो शादाब हुआ करता था, लेकिन आज खौफनाक रेगिस्तान है, रेत ही रेत है हर तरफ, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई वहां पे जाके रह ही नहीं सकता, कोई वरना कोई खाली जमीन नहीं छोड़ता वहां पे, को जाके कुछ बनाए, कुछ खरीद लें उस जगह को, कोई खरीदने वाला भी नहीं उसका। और ये कौम हुक्मरान थी वहां की, और बहुत ऊंचे लंबे थे, बहुत कदावर थे, और इनका तमद्दुन भी बहुत अजीम था, लेकिन इनके अंदर शिर्क की बीमारी थी। इसी वजह से पैगंबर ने इनको वही पैगाम दिया जो पहले पैगंबर दे चुके और जो बाद में आने वालों ने भी दिया, कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि ना तुम इबादत करो मगर सिर्फ अल्लाह की। क्यों सिर्फ अल्लाह की क्यों करें? इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर तुम नहीं करोगे तो डर जाओ, मैं तुम्हारे लिए डरता हूं कि बड़े दिन के अजाब से। बड़ा दिन कौन सा? किस दिन को यौमुन आदीम कहा गया? वो दिन है जो कयामत का दिन है। कयामत का एक नाम ये भी है कि वो अजीम दिन है। किस वजह से वो बहुत बड़ा दिन है? एक तो लंबा बहुत है, 50,000 साल के बराबर। दूसरा बहुत भारी है वो दिन, यौमुल थकील भी कहा गया ना, बड़ा भारी दिन है वो। तो मैं तुम्हारे लिए डरता हूं, इसी से आपको खैर ख्वाही का पता चलता है ना, कि वो उनके कितने खैर ख्वाह थे, कि ये नहीं कि मैं कोई चीज हूं या मैंने बड़ा बनना है। मैं तो इसलिए डरता हूं कि यार कहीं ये ना हो कि तुम अजाब से दो चार हो, क्योंकि जो कौमें शिर्क में पड़ जाती हैं फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर दुनिया में भी अजाब आ सकता है, आखरत में तो उनके लिए है ही है। वरना दुनिया में भी उनके लिए जो कौमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो कोई कौम उम्मते मुस्लिमा वाइप आउट नहीं होगी कभी भी, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कभी भी इस तरह से ना खत्म करना जैसे पिछली उम्मतें हुई थी। वो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मुसलमानों में ही जो अल्लाह के नाम लेवा हैं, जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अगर वो ही शिर्क करने लगते हैं तो याद रखिए उनके ऊपर इसी दुनिया में ही बलाएं आती हैं, उनके ऊपर इसी दुनिया में ही परेशानियां मुसीबतें, और जैसे महंगाई है, जैसे बदअमनी है, जैसे बुरे हुक्मरान है, जैसे दुश्मन का खौफ है, इस तरह की अजाब अल्लाह ताला उनके ऊपर मुसल्लत किए रखता है। तो शिर्क ऐसी चीज है जो कि किसी तरह भी दुनिया में भी इंसान को चैन से नहीं रहने देती। हाँ, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को माना ही नहीं है उनके तो अल्लाह ताला पकड़ करेगा ही आखरत में। और जैसे मैंने आपको बता दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दी ना भी पिछली आयत के अंदर, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला इनको काफरों को इसी दुनिया में ही दे देगा, जो भी उन्होंने कोई नेकी की हो यहीं पे उनको मिल जाएगा, आखरत में उनके लिए कुछ नहीं है। ये हमारे इस सवाल का भी जवाब है जो हम पूछते हैं कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते कैसे वो दुनिया में इतने फ्लरिश कर रहे हैं, कैसे उनके पास इतना कुछ है। और बाज दफा शैतान जहन के अंदर ये बात भी डालता है कि पता नहीं भाई फिर शायद हम ही गलत हैं, यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, पता नहीं क्योंकि इनके पास इतना कुछ जो है। कहते हैं ना कि फकर भी इंसान को बाज दफा कुफर तक ले जाता है। तो कभी जो लोग दुनिया में मुफलिसी में होते हैं वो ये समझने लगते हैं कि शायद हम भी ये बन जाएंगे, जो ये इनका अकीदा है तो शायद हमें भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उनको जो इतना कुछ मिला हुआ है ये इस बात की निशानी नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे राजी है, या ये बात की निशानी नहीं है कि वो लोग ठीक हैं। बल्कि याद रखिएगा, अगर कोई बात करे ऐसी कि फिर मुसलमान अगर सही अकीदे के ऊपर हैं तो फिर वो दुनिया में इतने क्यों पिस रहे हैं, फिर काफिर क्यों इतने ऊपर हैं, ये अक्सर सवाल आता है मेरे पास। तो बात ये है, काफरों को अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में उनकी किसी भी खैर के काम का बदला दे देना, और दुनिया में मुसलमान क्यों पिस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दीन को छोड़ दिया, शिर्क में पड़ गए हैं। और आज का एक बड़ा शिर्क, वो तो कब्र परस्ती तो है ही है, वो तो आप देख लें जो हाल पाकिस्तान में, इंडिया में, मिस्र में मुसलमानों का है, जगह जगह मज़ार बने हुए हैं, कब्र परस्ती हो रही है, उसके आगे झुक भी रहे हैं, नमाजें उनकी तरफ पढ़ रहे हैं, दुआएं उनसे मांग रहे हैं, जो हम पहले बात कर भी चुके हैं, हवामीम में ये बातें पहले भी आ चुकी हैं कि शिर्क कैसे थे और शिर्क के बाद अल्लाह ताला क्या अंजाम से दो चार करता है। तो अगर इन लोगों को देख के, जो गैर मुस्लिम है उनको देख के जहन में कहीं ये शायबा भी आता है कि पता नहीं ये ठीक है, हम तो पिस रहे हैं, तो अपने आप को भी देखें कि कहीं शिर्क में तो नहीं मुबतला, क्यों हमारे जवाल का वजह कहीं ये तो नहीं है। तो एक तो ये, दूसरा जो लोग ये कब्र परस्ती की तरफ नहीं जाते उन्होंने अपना खुदा मटीरियल को बनाया हुआ, पैसा माल दौलत इसकी हविस इस कदर के उसके पीछे अपने दीन को बेचना कोई बड़ी बात ही नहीं। दीन एक तरफ हो, पैसा कहीं से मिल रहा है तो बस वो चीज़ है जो कि अपना खुदा बनाया हुआ जिसको। तो दिरहम हलाक हो गया, अब्दुल दीनार हलाक हो गया, ये किसने फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आब्द कहते हैं बंदे को, वो अब्दुल्ला नहीं है, अल्लाह का बंदा नहीं बना, वो दिरहम का बंदा बना, दीनार का बंदा बना, डॉलर का बंदा बना। डॉलर आ रहे हैं तो बेचने को भी तैयार हो जाएगा अपना दीन, ईमान, इज्जत, हत्ता के बेगुनाहों को भी दे देंगे दूसरों को, औरतों को भी बेच देंगे अपनी, बस डॉलर आना चाहिए। तो ये चीज कि इंसान अपने ईमान को इतना हल्का कर ले और दूसरी चीजों की परस्ती शुरू कर दे, ये भी तो शिर्क है। और आज का ये शिर्क है, आज बुतों के आगे नहीं लोग खड़े हो रहे, इस शिर्क से दो चार हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ना इबादत करो किसी की, जो कि हर पैगंबर का यही पैगाम रहा है, मैं तुम्हारे लिए डरता हूं बड़े दिन के अजाब से। हालांकि वो भी ये कर सकते थे कि भाई अपनी इबादत करते रहो, भाई लोग जाएं जहन्नुम के अंदर, हमें क्या, लेकिन पैगंबरों के अंदर खैर ख्वाही थी। वो पैगंबर होते ही ऐसे हैं कि उनके अंदर इंसानियत के लिए हमदर्दी होती, और पैगंबरों के बाद अब जब ये उम्मत खड़ी हुई है वही काम करने के लिए जो पैगंबरों का, तो जरूरी है कि इनके अंदर ये हमदर्दी हो इंसानियत की, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी ऐसी ही हमदर्दी हो कि ये किस तरफ को जा रहे हैं, ये इन्होंने अपने ईमान बेच दिए, ये किसकी पूजा में लग गए, कोई कब्रों पे झुक रहा है, कोई पैसे के आगे झुक रहा है, और जो दूसरे हैं जो बुत परस्ती कर रहे हैं या जो और तरह के शिर्क कर रहे हैं या जो एथीस्ट हो गए, उनके लिए भी ऐसी हमदर्दी हो, यहाँ क्या बनेगा इनका? अगर ये इससे बाज ना आए तो आग का अजाब कितना बड़ा है, इनकी फिक्र लग जाए। लेकिन देखा जाए तो हम में से किसी को भी ये फिक्र क्या, कभी ख्याल भी नहीं आया, कभी ख्याल भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा, करते रहने दो भाई, हर एक का अपना अपना है। पैगंबर भी ये कह के आराम से बैठ जाते, हर एक का अपना अपना है, देखें जी करने दें जो जो कर रहा है, हमें क्या। वो कहता है ना, तू तू अपनी बना, तुझे पराई क्या पड़ी है, पता नहीं इस तरह से कुछ शेर है ना, कि तू अपना काम करो, तुम्हें क्या कि लोग क्या कर रहे हैं। तो पैगंबरों ने ऐसा नहीं किया, पैगंबरों की जिंदगियों से सीखें, उनकी तड़प, उनकी हमदर्दी, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये सीखते हैं कि कितनी ज्यादा उनको तड़प थी कि अल्लाह ताला को बार बार कुरान करीम में कहना पड़ा कि ऐ नबी आप इतना गम ना करें, आप इनके पीछे क्यों इतने हलकान हो रहे हैं, छोड़ दें इनको। तो अल्लाह ताला की तरफ से वो लोग दुनिया में मबऊज किए गए जो इंसानियत के हमदर्द थे, जो इंसानियत के लिए हसास दिल रखते थे, जो इंसानियत की भलाई चाहते थे। सबसे बड़ी भलाई ये है कि शिर्क से लोगों को रोका जाए, किसी को आप अस्पताल बना दें, किसी को आप कोई और यतीम खाना बना दें और लोगों की भूख मिटाने का इंतजाम कर लें, ठीक है बड़े नेकी के काम है, लेकिन ये वक्ती काम है। जो असल भलाई है किसी के साथ, वो हमेशा की जिंदगी के अंदर उसको आग के अजाब से बचा लेना है, ये असल भलाई है इंसान के लिए। क्योंकि भूख भी इंसान बर्दाश्त कर लेगा, प्यास भी बर्दाश्त कर सकता है, बीमारी भी आ गई ठीक है, रो धो के किसी दिन बीमारी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आग का अजाब है वो खत्म नहीं होने वाला, अगर कुफर पे मर गए तो, अगर शिर्क पे मर गए तो। लिहाजा पैगंबरों ने इस चीज की फिक्र की है, और इसी चीज को हम कहते हैं कि आप लोग इसको अपनी फिक्र बनाइए, खड़े हो जाएं इसके लिए, कभी तो सोचें कि ये अल्लाह ताला के बंदे किस तरफ जा रहे हैं, हाय जहन्नुम का अजाब मुझे पता है कि क्या होता है, मैंने कुरान में पढ़ा जहन्नुम का अजाब कितना सख्त है, मैं इन लोगों को बचा लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम आग की तरफ जा रहे हो और मैं तुम्हारी पुश्तों से तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं, जैसे पतंगे नहीं होते वो जाके आग में गिरते रहते हैं, मैं तुम्हारी पीछे से तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं और तुम होके चुड़ा चुड़ा के आगे जाते हैं। तो कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी थी। तो थोड़ी सी इसकी रमक भी अपने अंदर लेकर आए ना तो हम कुछ कर सकते हैं, जरा सी भी।
हम उतनी नहीं कर सकते जितने पैगंबर थे, उन्होंने तो अपनी जिंदगियां इस काम के लिए लगा दी ना। लेकिन हमारे अंदर जरा भी है टटोले अपने दिल को, जरा सी भी हमदर्दी है, अगर कहें भी कि उठ जाओ जाओ, लोगों को बुलाओ, कुरान की तरफ बुलाओ, खुदा के लिए हिदायत के पैगाम की तरफ बुलाओ, नहीं हमारे पास तो इतने काम है, हम तो बिजी बहुत है, हम तो खुद ही पढ़ने के लिए आ गए तो बहुत बड़ी बात समझे, आपके ऊपर एहसान है, हम कहाँ जाएंगे लोगों को कहने के लिए, हमें तो भाई शर्म आती है। पैगंबरों ने तो शर्म नहीं की, उन्होंने तो अपनी इज्जतों का ख्याल नहीं किया, लोगों ने उनको बुरा भला भी कहा, नूह अलैहिस्सलाम को तो मार मार के उनके घर में अदमुआ करके छोड़ के चले जाते थे, उन्होंने तो नहीं इस चीज का ख्याल किया। हमें तो खैर कभी अल्लाह माफ करे हमें कि हमें किसी ने जरा सी टेढ़ी आंख भी नहीं देखा होगा, लेकिन हम फिर भी शर्मा के बैठ जाते, क्यों कहें, हमारा काम है क्या ना? हाँ आपका ही काम है, क्योंकि आप उम्मत मुस्लिमा है, आप और आप ही को ये मकाम इसीलिए मिला है कि आपके जिम्मे अब पैगंबरों वाला काम है, ऐसे ही नहीं कि आप बड़े लाडले थे, आप बस नबी की उम्मत हो गए, आखिरी नबी की तो हम बहुत बड़ी चीज हो गए, मनाते फिरते नबी का दिन और उनकी पैदाइश का दिन और फिर बड़े इसके ऊपर खुश होते हैं, हमने तो हक अदा कर लिए, उनकी तड़प का कोई हक अदा किया, उनकी तड़प को अपनी तड़प बनाया। मैं नहीं कहती कि वो अपनी जिंदगियां पूरी लगा के और कुछ ना करें, लेकिन कुछ तो जरा सा भी एहसास है इंसानियत, अपने मुसलमान बहन भाई भी किस तरफ को भागे जा रहे हैं, किस तरफ दौड़ रहे हैं, अगर हम करने के लिए कुछ करते भी हैं तो तब भी इसलिए ताकि हमें शाबाशें मिले, हमें कोई टाइटल मिले, हमें कोई इनाम मिले, हमारे नाम लिए जाएं, हम बड़ी चीज बन जाएं, तब तो ठीक है, वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर हम किस बात पे फख्र करते हैं कि हम चुनी हुई उम्मत है, हम बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन उम्मत आप तभी बनेंगे जब आप इस मिशन को आगे लेके चलें, वरना जलीलो ख्वार होंगे दुनिया में और हो रहे हैं। और आप देख लें कि दूसरों ने आज हमसे क्या सीखना, हम तो खुद भी भूल गए वो रास्ता जिस पे हमने चलना था। तो कुरान पढ़ने वाले तो कम से कम इस तड़प को अपने अंदर पैदा करें खुदा के लिए, आप किसी और को नहीं, काफिर को नहीं बुला सकते, मुसलमानों को ही बुला लो, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनको ही बुला लो, नहीं फिर वो हमें ये कहते हैं, फिर वो हमें ये कहेंगे, फिर वो हमें वो कर, तो क्या हो गया, हमारी इज्जतें क्या नबियों की इज्जतों से भी ज्यादा है, रसूलों की इज्जतों से ज्यादा है? जब वो कह दें तो कहें शुक्र है, आज मैं उस काफले का हिस्सा बन गई, जो काफला पैगंबरों का काफला है, जिसमें आगे आगे पैगंबर, मैं भी कहीं पीछे, बिल्कुल पीछे, एक इस काम करने के लिए अगर मैंने अपना चंद घंटे भी निकाल लिए इस काम को किया, तो मैं भी कहीं पीछे, चलो इस काफले में तो शामिल हो गई, मुझे भी किसी ने किसी दिन टेढ़ी आंख से देख लिया, या कोई खिताब दे दिया मुल्लानी का या एक्सट्रीमिस्ट का या पागल का, चलो शुक्र है मैं भी इस काफले में शामिल हो गई, जिसके लीडर्स कौन है, पैगंबर है, ये उनके वाला दर्द है जो मैंने लिया, ये उनकी वाली जिम्मेदारी जो मैंने उठाई है। आपको कोई काम कहे कि ये काम वो है जो सदर साहब करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, वजीर करते हैं, तो आप कहेंगे वो वाला काम मुझे दिया जा रहा है, इसके लिए तो लोग बेचारे मारे मारे फिरते हैं, वोट लेने के लिए देखो कैसे मिन्नतें करते हैं, क्या क्या करने को तैयार हो जाते, झूठ तक बोलते हैं, धोखे देते हैं, हमें ये काम दे दिया जाए, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया इस काम के लिए कि ये उम्मत ये काम करेगी, वो जो ऑनरेबल काम पैगंबरों का था, लेकिन उम्मत को कहाँ एहसास, उम्मत को कहाँ पता कि मेरे जिम्मे ये जिम्मेदारी है, ये उम्मत भूल चुकी है इस काम को, इस रास्ते को, और बिल्कुल उसी रास्ते पे चल पड़ी जिस पे काफिर चल रहे हैं, काफिरों के जिम्मे तो ये काम नहीं था, उम्मत मुस्लिमा का जिम्मा था ना, फखर तो आप कर रहे हैं ना कि हम उम्मत मुस्लिमा के चुने हुए लोग हैं, और इसी बात के ऊपर हमारी निजात होनी चाहिए आखरत में कि हम उम्मत मुस्लिमा के, बैज तो आपने लगा लिया, बैज लगाने के बाद कोई काम भी तो करना था, अगर आज अगर एक काफिर की जिंदगी और एक मुसलमान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है तो किस चीज का ऑनर ले रहे हैं, किस चीज का टाइटल मिलना चाहिए, किस बात के ऊपर आखरत के अंदर निजात के लिए आपको रखना चाहिए उम्मीद कि हमें निजात मिलेगी क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा हैं। तो देखें पैगंबरों का काम, और देखें उनकी खैर ख्वाही कि वो यही पैगाम देते रहे, और उन्होंने ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने ये पैगाम कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, सूरह आराफ में कितने सारे पैगंबरों की बात आती है, नूह अलैहिस्सलाम से लेके हूद अलैहिस्सलाम, सवाल अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सब ने यही पैगाम दिया। इससे हमें पता चलता है कि वो ये नहीं कहते थे आगे लोगों को, लोगों ईमानदारी के साथ रहो, लोगों जिना ना करो, लोगों चोरी डाके ना डालो, वो बाद की बातें हैं, पहले इस पैगाम को आम किया। हम कहते हैं ये कहेंगे तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, ये इस बात को कहा कि एक अल्लाह हय और कयूम है, एक अल्लाह की जात है जो हमेशा से कायम और हमेशा रहने वाली है, कोई और नहीं है जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, तो अगर हमने ये कह दिया लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। यही तो पैगाम देना है भाई, अच्छी अच्छी बातें बस लोगों को सिखा दो, उनको कह दो अखलाक अच्छे रखो, सलाम किया करो, देखो अच्छे बन के रहो, हमसायों से अच्छे रहो। देखिए ये अखलाक के दर्स बाद में है, पहले जो बेस है जिसके ऊपर इमारत खड़ी होनी वो तो तौहीद है। तौहीद को ही अगर छोड़ दिया और इस पैगाम को ना आगे दिया तो फिर क्या दिया? तो पैगंबरों की ये तड़प थी सबसे पहले, उसके बाद वो बुराइयां जो लोगों की होती थी उनको एड्रेस करते थे। मैं तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। कालू, उन्होंने कहा, आगे से क्या वो जवाब देते हैं, अजीतना लितफिकना अन आलिहतिना, क्या तू आया हमारे पास ताकि तू हमें फेर दे हमारे इलाहों से। आप देखें कि इनसे पहले भी कौम को, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनसे पहले भी डराया जाता रहा, लेकिन आप देखें नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो सवार हुए साम, वो तो तौहीद पे थे, उनके आगे उनकी नस्ल के अंदर ही ये कौम आद पैदा हुई। जबकि क्या ये नहीं जानते होंगे कि पिछले पैगंबर ने भी यही नसीहत की थी, नूह अलैहिस्सलाम हमारे यानी जद्दे अमजद हमारे पीछे नूह अलैहिस्सलाम थे, वो भी यही कहते थे। पैगंबरों का तो पैगाम एक ही रहा है, कभी तौहीद वालों में भी आगे काफिर पैदा हो जाते। ये नूह अलैहिस्सलाम के उस बेटे से औलाद है जो कि मतलब सही थे, और इन्हीं से आगे फिर समूद पैदा हुए जो इनमें से ईमान वाले निकले, क्योंकि ये तो खत्म हो गए थे। तो कभी इस गुमान में खुशफहमी में हमेशा नहीं रहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो हमारे बच्चे और हमारी नस्लें भी मुसलमान ही रहेंगी, और क्या रहेंगी। नहीं, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान दर पे होता है। शैतान तो कोई रास्ता चाहता है कि कहीं कोई चोर दरवाजा मिल जाए मुझे और मैं दाखिल हो जाऊं। तो वो कहने लगे तू हमारे पास आया कि हमें हमारे इलाहों से हटा दे, फातीना अभी मा ताईदुना इन कुंता मिना सौदिकीन, ले आ वो जो जिसकी तू हमें धर्म का धमकियां देता रहता है, अगर तू सच्चा है तो क्या ले आ, अजाब। कभी इंसान अजाब की भी जल्दी मांग सकता है, कभी इंसान शर को भी जल्दी मांग सकता है। हाँ, ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने शर को भी जल्दी मांगा। अबू जहल नहीं काबे का पर्दा पकड़ के कहता था कि अगर ये सच्चे हैं तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बारिश कर दे या अल्लाह, यानी अपने ऊपर खुद अजाब मांगते थे, बार बार कहते थे ले आओ वो अजाब, ले आओ वो अजाब, कहाँ है वो कयामत। तो इस तरह से करके वो मजाक उड़ाया करते थे, इस चीज को हकीर करते थे, अजाब को भी ऐसा समझते थे जैसे कोई चीज ही नहीं है। तो बाज दफा इंसान अपनी जुबान से ही अपने लिए शर मांगने लगता है बजाय खैर मांगने की। हम तो नहीं है कहीं ऐसा करते, जब हम गुस्से में आ जाते हैं, जब हमें किसी के ऊपर बहुत बहुत किसी से नाराजगी होती, तो क्या कहते हैं, अपने आप के ऊपर ही बद्दुआएं करने लगते हैं, कभी अपने घर पे, कभी अपने बच्चों पे, कभी ये कहने लगते हैं अगर मैं झूठी हुई तो मैं मर जाऊं या मेरे बच्चे या मेरे घराना या मेरे फलां। हालांकि आप सच्चे भी हैं तो बुरी बात मुंह से ना निकालें, चाहे आप सच्चे भी हो। कभी कहते हैं हाय हम ही मर जाएं, हाय हम ही मर जाते, हमारा कुछ ना रहता, फलां का कुछ ना रहता है, अपने ही प्यारों के ऊपर, अपने ही बच्चों को बाज दफा माएं बद्दुआएं देने लगती। कभी शर ना मांगे, हमेशा खैर मांगे, कभी ये ना कहे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बेड़ा गर्क होना पता है कितनी बड़ी बात है, अभी ये मुहावरतन हम ऐसे कह देते थे बेड़ा गर्क हो इसका, लेकिन जिसका बेड़ा गर्क हो गया ना तो बड़ी मुश्किल में आ गया। बे सोचे समझे मुंह से शर निकालते रहना, और आम तौर पे औरतों की ये बातें होती हैं। ऐसा हो जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मैं ऐसी हो जाऊं, तो कभी भी ना निकाले। आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि इससे तो बेहतर था कि मुझे कैद ही हो जाए, इन औरतों के शर्म से बेहतर, और फिर कैद हो गई थी। कभी कभी मुंह से निकाली भी बात फौरन पूरी भी हो जाती है, और फिर हम रोते हैं उसके बाद कि हाय ये तो मैंने कहा था उस वक्त। और बाज दफा ये लोग सवाल भी करते हैं कि अब हम तो, हमने ऐसा कह दिया, अब हमारे पर ये आफत आ भी गई जैसा हमने कहा था, तो अब हम क्या करें? तो खुद ही मांगी थी फिर। तो केयरफुल हो, अपनी जुबान को कंट्रोल करें बजाय हमारी जुबान हमें कंट्रोल करें। हाँ, वो अपने ऊपर शर मांग रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं लिया हमारे ऊपर अजाब, कोई अच्छी चीज है अजाब? और लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि वो एक दिन उन्होंने ये कहा और उसके बाद फौरन हो गया ऐसा, नहीं, बल्कि बहुत अरसे तक उन्होंने तबलीग की और ये लोग ऐसा कहते रहे, हम तंग आ गए हैं ए हूद आपकी बातें सुन सुन के, और अब आप ले ही आए हमारे ऊपर आजाब, आ क्यों नहीं जाता? قال انما العلم عند الله। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक बात बता दूं, बाज औरतें भी कहती हैं आप मुझे तलाक दे क्यों नहीं देते, दे देना मुझे तलाक, मुझे तंग आए मैं तो दे देना, ये भी बुराई मांगना है ना, खुद ही दूसरे के मुंह में अल्फाज डालना, तो ये सब बुरी बातें हैं। तो वो उसने कहा, किसने? हूद अलैहिस्सलाम ने, इन्नमल इल्मु इंद अल्लाह, मुझे क्या पता कब आना है अजाब, मुझे कह रहे जल्दी ले आओ जल्दी ले आओ, मैं ना अजाब ला सकता हूं ना मुझे पता है कि कब आएगा। और आप इससे कितनी जबरदस्त ये बात देखें कि उन्होंने ये नहीं कहा मुझे पता है, वो कहते ना, वो कहते थे कि कब आएगा अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, कब आएगा, ले आओ उसको। तो आप देखें, उन्होंने ये नहीं कहा हाँ मुझे पता है, हम तो कितना इसको बुरा समझते हैं कि अगर कोई कह दे कि भाई कब ये चीज होगी या क्या होगा, या इस सवाल का कोई सीने मेरे से पूछ लिया है, तो अब लाजमी मैंने इसका जवाब देना चाहे मुझे आता हो या ना आता हो, क्योंकि फिर ये समझेगा कि मुझे आता ही नहीं है। अब उन्होंने ये नहीं कहा, ये लोग तो बिल्कुल ना समझी की बात कर रहे हैं, कब आएगा अजाब, लेकर आओ अजाब, ये ना समझी की बात है। पैगंबर आगे से उनकी लेवल पे नहीं जाते, वो कहते हैं मुझे नहीं पता कब आएगा, और इसमें वो शर्म महसूस नहीं करते, उसके अंदर कोई कोई ये उनकी इज्जत में कमी नहीं हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते थे मुझे नहीं पता कब आएगा अजाब। तो इससे हमें पता चला जब पैगंबरों को ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे नहीं पता, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, बेशक इसका इल्म अल्लाह के पास है। आपको पता है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों का फरमाया था कि तुम इन चीजों के नाम बताओ जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे, फरिश्तों को नहीं पता था, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, सुभान का तू पाक है अल्लाह, हमें नहीं पता। तो इसमें कोई बुराई नहीं है आपकी, कोई शर्म नहीं है आपकी कि अगर आपसे कोई सवाल कर ले और आप कह दें मुझे नहीं इसका पता, नहीं पता तो नहीं पता, आप इल्म छुपा नहीं रहे, लेकिन आपको अगर श्योर नहीं है, जरा सा भी शक हो, तो प्लीज किसी को जवाब ना दिया करें बजाय उल्टे सीधे जवाब देने के। बहुत सारे लोग मेरे पास इस बात को लेकर आते हैं, हमने ये सुना है, किसी ने हमें ये कहा है, और बिल्कुल उल्टी बातें। मैं कहती हूँ किसने आपको ये बता दिया, किसने आपको कह दिया ये, फलां ने बताया था, फलां ने बताया, खुद ही बताने शुरू हो गए। तो कितना गलत है ये कहना कि अपनी तरफ से बातें बना के और जवाब बता देना ताकि हमें लोग समझे कि हम बहुत बड़े लायक और वायक और हम बड़े अल्लामा हैं। नहीं, परहेज किया करें इससे और मत शर्माया करें कहने से कि वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता, या मैं पूछ के बता दूंगी, कोई शान में कमी नहीं आ जाती हमारी। और पैगंबरों के नहीं आए तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम ये कह दें? वह उबल्ली हुकुम मा उर्सिल तु भी, मैं तो बस पहुंचा रहा हूं जो मेरे पास भेजा गया, मेरा काम आप लोगों को इस चीज का जवाब देना नहीं है, मेरा काम सिर्फ पहुंचा देना। सूरह आराफ में भी यही है, उबल्ली हुकुम रिसालाती रब्बी, वा अना लकुम नासिहुन अमीन। मैं तो तुम्हारे पास एक नसीहत करना है ना, मुझे मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे तक पहुंचा दूं अल्लाह ताला का पैगाम, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखे ना, वो कह रहे तुम तो हमें हटाने के लिए आए हो, तुम ये करने के लिए आए हो, तुम ऐसे करने। ये हमेशा से लोगों का काम रहा है कि लोग जो उनकी खैर ख्वाही करते हैं ना उसके पर, नहीं इसका तो कोई एजेंडा होगा, ये तो यहूद के एजेंडे पे चल रहा है, इसको तो कहीं से मिलती होंगी फंडिंग, ये तो कोई ऐसे होगा, ऐसे ही उसके ऊपर बातें करेंगे कि लोगों को उससे भगा दें दूर, प्रोपोगंडा जैसे फिरौन ने भी किया था। ये तो तुम्हारे तुम्हारी ये जमीन से निकाल देना चाहते, हालांकि ऐसा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी नहीं था कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा इस जमीन से, लेकिन फिरौन ने ये बना लिया। तो शकूको शुभात पैदा करने एक दाई इल्लाह की बारे में और उसके मकासद को कुछ और ट्विस्ट करके बताना कि इसका तो मकसद ये है, और गालिबन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आता है कि उन्होंने कहा था ये तो तुम्हें बड़ा बनना चाहता है, यानी लीडरी चाहता है अपनी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी काफिर आ गए थे ना यही कहते हुए, अगर तुम्हें लीडरशिप चाहिए वो भी तुम्हें दे देते हैं, शादी करनी वो भी, यानी तुम्हारे ये मकासद है, इनमें से कोई मकसद होगा ना इसके लिए कर रहे हो, तो हम वो तुम्हें वैसे ही दे देते हैं मगर ये छोड़ दो। तो हमेशा ऐसा कहा जाता है, इस तरह से लोगों को बदजन किया जाता है कि देखो ये तो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, इनका मफाद है इसके अंदर, वोट लेने हैं इन्होंने। इसी वजह से पैगंबर कहते थे हमें तुम्हें कुछ तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा काम बस ये अल्लाह ताला ने जो पैगाम हमें दिया वो तुम तक पहुंचा दे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहते मैं तुम्हें बस पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूँ, लाकिन अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम जिहालत की बातें कर रहे। जिहालत क्या है? कुफर पे अड़े रहना जिहालत है। जिहालत ये नहीं है कि कोई इंसान स्कूल नहीं गया कॉलेज नहीं गया तो ये जाहिल है जी, ये हमारी जुबान में जिहालत होती है, लेकिन असल जाहिल वो है जिसने अपने रब को ना पहचाना, अपने मालिक को ना पहचाना, जिसने उसको पैदा किया, अब उसका खालिक है, जिसका सबसे बड़ा एहसान है उसके ऊपर, जो उसका मोहसिन है, उसी को नहीं पहचाना, ये सबसे बड़ा जाहिल। चाहे वो अपने आप को पीएचडी करे, साइंटिस्ट कहे, पता नहीं क्या क्या अफलातून कह रहा है, वो कुछ भी नहीं है, वो जाहिल है अगर उसने अपने रब को नहीं पहचाना। इस कायनात को देख के भी उसको रब नहीं याद आया, उसकी पहचान नहीं हुई, अपने आप को अपने जिस्म में ही देख लेता, आफाक में भी अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हैं, कायनात में भी, और तुम्हारे अपने अनफुस में भी रखी हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कहीं तो देख लेते, तो कितना बड़ा जाहिल है जिसने कहीं पे भी नहीं देखा, आंख खोल के देखा ही नहीं, हर तरफ उसके अल्लाह ताला की निशानियां बिखरी पड़ी, अगर उसको तौफीक ना हो। और आज कितने ही ऐसे इंसान हैं जो जाहिल हैं, जाहिलों के हजूम है, कितनी पॉपुलेशन जो अब की कहती है हाँ अल्लाह है बस, और उसके बाद कुछ भी नहीं पता, कितने ही हैं स्कूलों में कॉलेजों में बड़े बड़े दफ्तरों में, कितने बड़े ओहदों के ऊपर वजीर हैं मुशीर हैं, लेकिन सब जाहिल हैं, क्योंकि वो अपने रब को नहीं पहचानते, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ ली, लेकिन जिसने रब के कलाम को ना पढ़ा, जिसने रब को ही ना जाना, उसकी मार्फत नहीं उसकी पहचान नहीं आई, वो जाहिली तो है। तो जाहिल रहना पसंद है क्या कि अल्लाह ताला के यहां हम जाहिल उठें और जाहिल ही रहें? अगर नहीं तो रब को पहचाने उसके कलाम से, जाहिल बनना पसंद ना करें। हमें लोगों में से कोई कह दे तुम बड़ी जाहिल हो, वो कितना बुरा लगेगा, लड़ने खड़े हो जाएंगे उससे कि तूने मुझे क्यों जाहिल कहा, लेकिन अल्लाह के यहां हम जाहिल रहें ठीक है ये? तो उन्होंने फरमाया मैं तो तुम्हें देखता हूं कि तुम जिहालत बरत रहे हो, तुम अंधे हुए पड़े हो ख्वाहिशात के पीछे। अब देखें आप शुरू से इसको देखें तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही जा रही कि आप कुरैश मक्का को ये बात बता दें, ये किस्सा सुना दें, आद का, आद का ही किस्सा क्यों सुनाएं, क्या वजह थी? अभी मैंने आपको बताया कि आद जो थे वो भी दुनिया में इतने मगन हो चुके थे, इतना वो अपने आप को बड़ी चीज समझते थे, उन्होंने ये टावर्स बना लिए, पता नहीं वल्लाहु आलम कैसे बनाए होंगे, अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या उनके पास टेक्नोलॉजी थी या वो कितने ताकतवर थे कि जो इतने लंबे लंबे सुतून जो उन्होंने आप खुदाइयां भी करके बताया है कि कितने बड़े बड़े टावर्स मॉन्यूमेंट्स खड़े किए हुए, कैसे बनाते थे वो समूद की आज तक खड़े। हमारे तो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर जिस जो हम अपने आप को बहुत बड़ी चीजें समझते हैं, हर दौर में ही शायद कौमों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझा, शायद कुरैश मक्का भी समझते थे, समूद के आज तक खड़े में वो जो मकानात थे, हजारों साल गुजर गए, हमारे कहाँ 100 साल भी नहीं चलते, गिर के वो जाते हैं हवाओं से ही उड़ जाती हैं छतें, वो जलजला आता है देखें कैसे गिरे पड़े होते हैं, वो हजारों साल गुजर गए वैसे के वैसे ही खड़े हैं। आप सोचते नहीं है कि ये कौमें कितनी आगे होंगी, क्या टेक्नोलॉजी थी इनके पास, क्या समझ थी इनके पास, क्या अकल थी। अगर आज आप सोचते हैं ना, मैं तो 21st सेंचुरी की बंदी हूं और मैं तो यहाँ बंदा हूं और मैं तो पता नहीं कितनी चांद पे पहुंच गए, हमने तो क्या क्या डिस्कवरीज कर ली और हम तो पता नहीं क्या चीज है, तो ये गलत फहमी है क्योंकि पहली कौमें बहुत बड़ी बड़ी शानो शौकत वाली थी, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वैसे कोई थे ही नहीं, मिसलुहा फिल बिलाद, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कहीं के कहीं मुल्कों में, ऐसी कोई नहीं मिलते थे जैसे वो थे लोग, खुद फरमाया अल्लाह ताला ने वैसा पैदा ही नहीं किया, तो फिर हम क्या हैं और हमारा नॉलेज क्या है। तो वो बड़ी बड़ी तहजीबें थी, और इसी तरह कुरैश मक्का को भी बहुत जोम था कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, और वो भी इसी तरह अपनी दुनियावी शानो शौकत में खोए हुए थे, और यहीं की लज्जतों में और यही और अपने आप को बड़ी बहुत बड़ी चीज समझते थे क्योंकि बस काबा के मुतवल्ली और अलग तो कुछ भी नहीं थे उन कौमों के मुकाबले में, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे। तो इनको बताया जा रहा है कि तुमसे भी बड़ी ये कौम गुजरी है, तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके मुकाबले में, और देख लो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया जब उन्होंने शिर्क को छोड़ने से इनकार किया, जब उन्होंने झूठे माबूदों को छोड़ने से इनकार, उनके पैगंबर ने भी उनको सेम यही पैगाम दिया था जो तुम्हें आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, फिर देख लो उनके साथ क्या बना। फलम्मा रअऊहु आरिदं मुस्तकबिला औदियतिहिम, जब उन्होंने देखा उस बादल को जो आने वाला था सामने से आ रहा था, मुस्तकबिल होता ना जो सामने होता है, सामने से आ रहा था उनकी वादियों की तरफ, बादल को उन्होंने देखा, तो बहुत अरसे से इनके पास कहत सा हुआ हुआ था, खुश्क साली थी, बारिश नहीं बरसी थी, तो जब इन्होंने बादल देखे आते हुए तो जैसे आज हम भी बड़े खुश होते हैं बादल आ गए, तो उन्होंने कहा कौला हादा आरिदु मुमतरुना, ये बादल आया हमारे पर मी बस बरसाने के लिए। उनके नबी ने कहा बल हुआ मस्ताजल तुम भी, नबी तो समझते थे उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से पता चल जाता था कि ये अजाब का वक्त इनके ऊपर आ गया, तो उन्होंने कहा नहीं बल्कि ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे, रीहुन फीहा अजाबुन अलीम, ये वो हवा है जो एक अजाब लेकर आई है दर्दनाक अजाब। तो उनके पैगंबर ने उनको वॉर्न कर दिया कि ये था जिसका तुम कह रहे थे ना कि लेकर आओ अजाब लेकर आओ अजाब, तो आ गया अब अजाब तुम्हारे पास, और वाकई उसके अंदर अजाब था। हूद अलैहि सलाम को और उनके साथियों को तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा, लेकिन इनके ऊपर फिर वो अजाब आया, ऐसी आंधी चली, ऐसी आंधी चली जब ये बादल आए ना, इतनी जोर से चली कि जिससे इनके घर उखड़ गए, इनके जैसे आप समझे टॉर्नेडो, टॉर्नेडो आ गया ऐसा वो टॉर्नेडो था ना, आपने आज भी देखा ना टॉर्नेडो कैसे होते, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन कभी आपने उसमें कहीं मतलब टीवी पे देखा होगा टॉर्नेडोज को, मैंने देखा ट्रक बड़े बड़े ये ट्रेलर ट्रक होते ना वो भी उठाए वो हवा के अंदर ऐसे जैसे छोटी छोटी मक्खियां होती हैं इस तरह हवा में गोल घूम रहे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो उस वक्त वो हमारे कहते नहीं जी इसके अंदर जिन्नात है, इसके अंदर ये ऐसी बात, ये अल्लाह ताला ने ऐसी हवा पहले भी भेजी हुई आद के ऊपर, वो टॉर्नेडो तो कैसा था कि कैसे टॉर्नेडोज थे, बहुत सारे होंगे, कि वो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलते रहे। हमारे पास तो यहाँ पे एक वार्निंग आती है कि टॉर्नेडो वार्निंग है, और वो एक गोला सा आता है और वो गुजर के चला जाता है। वो एक होता है जो चलता है और फिर ऐसे चीजों को उड़ा के ले जाता है। लेकिन इनके ऊपर तो 8 दिन तक यही होता रहा कि इनके मुवैशी ये खुद इतने लंबे लंबे थे, ये उड़ उड़ के ये हवा उनको ऊपर लेकर जाती थी, उठा के पटकती थी, इतनी जोर से जमीन पे मारती थी कि सर अलग हो जाता था और धड़ अलग हो जाता था। ये घबरा के अपने घरों में दाखिल हो गए, घरों के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन जो हवा थी वो ऐसी थी, रीह थी जिसमें दर्दनाक अजाब था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दरवाजों को तोड़ के हवा अंदर आती थी। और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैंने देखा है हरिकेन में, यहाँ पे हरिकेन की जब हवाएं जो हरिकेन के बाद चलती हैं, उसके साथ चलती हैं, तो हरिकेन तो ज़ाहिर समुद्री तूफान होता है, लेकिन उसकी जो जब वो लैंड फॉल किया उसने और जब हमारे इलाके में आया, तो मुझे यही याद आया कि ऐसे लग रहा था कि हमारे घर के जो खिड़कियां हैं ना, अब तोड़ के हवाएं अंदर आने लगी। हालांकि ये बहुत बड़ी कैटेगरी का नहीं था, ये फिर भी कम था, और ये अल्लाह ताला का एहसान होता कि जब हरिकेन्स लैंडफॉल करते हैं, जमीन के ऊपर आते हैं वो समुद्री तूफान, तो उनकी कैटेगरी कम हो जाती है, वो यानी शिद्दत कम हो जाती है अल्लाह की तरफ से। वरना जिस कैटेगरी के वो समंदर में होते, अगर उसी के साथ वो लैंड पे हिट करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, तो हम में से कोई बचे ही ना। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स होती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम होता है कि जो रब इस हवा को ला सकता है ना इतनी तेज, वो इससे भी ज्यादा तेज भी कर सकता है। हवाओं की जो आवाजें इतनी खौफनाक कि इंसान कहता है कि अल्लाह, हवा आवाज ही सुन के दिल दहल जाता है और लगता है कि अब बस हमने नहीं बचना, अब ये अंदर आ गई हवा तो फिर क्या हाल होगा। तो वो ये समझते थे हम बड़ी चीज है, अपने घरों के अंदर चले गए। उनके वो वाले घर नहीं थे जो जैसे समूद ने तो बाद में बनाए ना, उन्होंने कहा ये मिट गए इस तरह हवाओं से, तो हम अब ऐसे घर बनाएंगे ना, हमारे घर तो उड़ ही नहीं सकते, तो उन्होंने पत्थरों को तोड़ तोड़ के, पहाड़ों को तराश तराश के अंदर घर बना लिए कि अब कौन आके हमें पकड़ेगा। तो हम अल्लाह का मुकाबला कैसे कर सकते, आज घर खड़े में और मकीन नहीं है। तो अल्लाह का मुकाबला करोगे, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे अपने लश्कर के साथ हलाक किया जिसको लोग मामूली समझे, हवा को क्या हम समझते हैं, हवा तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझते ना हवाओं को, मतलब ठीक है हम जलजले को समझते हैं, हम और किसी आफत को समझते हैं कि ऐसी कोई चीज आ जाए, पानी आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, ऐसे हो जाए, तो भाई वो तो चीज है, हवा को हम तो कुछ जानते ही नहीं। अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज जो देख भी नहीं सकते आप, सिर्फ महसूस होती है, उससे ही उनकी हलाकत कर दी, उसको ही हलाकत का सामान बना दिया। वो ऐसी हवाएं थीं 8 दिन तक जब चलती रही ना, तो इनका एक एक फर्द, एक एक बंदा, कोई बच्चा ही नहीं, ना बच्चा ना बूढ़ा, ना मर्द ना औरत, वो जो ताकतवर अपने आप को समझते थे हवाओं के आगे, वो भी ऐसे बेबस हो गए। और इनकी सवारियां और इनके मुवैशी और इनके मालो मता को इस आंधी ने उड़ा उड़ा के वो हाल किया, सब रेत के नीचे दफन हो गए, कुछ रहा ही नहीं। कहाँ गई उनकी शानो शौकत, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई उनकी बड़ी बड़ी बातें, कहाँ गए उनकी तकब्बुर, कहाँ गई वो ये कि हम जैसा कोई है ही नहीं। वो तो कहते थे हम जैसा कोई है ही नहीं, हमारे जैसा वो तो सामने आए, जैसे आज भी लोग समझते। और अल्लाह हू अकबर, आज का इंसान जो बहुत बड़के मारता है ना, बड़ी अपनी बड़ाइयां करता है, ये तो सिर्फ एक बिजली की मार है। हवा तो क्या चले, एक बिजली चली जाए, इंटरनेट चला जाए इनका, तो ये कुछ भी नहीं है, वैसे के वैसे ही बैठे रह जाते। अल्लाह अकबर, ये तो इनके लिए तो कोई भी कोई जोर चाहिए ही नहीं इनको खत्म करने के लिए। जो आज का इंसान है। वो तो इतने इतने कदावर थे कि जैसे खजूर के तने खड़े हुए, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल ऐसे ही दी कि जैसे खजूर के तने हो इस तरह पड़े हुए थे, क्योंकि इतने टॉल थे। आज क्या 6 फुट से ऊपर किसी का कद ही नहीं होता, बहुत बढ़ गया तो 6 फुट चला गया। क्या समझता है आज का इंसान अपने आप को? इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर डरते थे ना, जब आसमान पे किसी बादल को भी देखते तो घबरा के कभी बाहर जाते कभी अंदर आते। जब तक वो बादल बरस ना जाता आपकी घबराहट घबराहट दूर नहीं होती। और आप फरमाते थे मुझे तो खुद नहीं पता कि शायद कि ये बादल वही हो जैसा कि कौमे आद के ऊपर आया था। अस्तग़फिरुल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर होके इतना डरते थे तो बाद वालों को कितना डरना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि ये हमारे लिए पास अजाब का पैगाम ले आया हो, हम डर ही जाएं। फिर भी नहीं डरते, डरते ही नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंधी आती थी तो तब भी आयशा अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंधी अल्लाह ताला की खुशी के आसार से है, आंधी रहमत भी लाती है और अजाब भी लाती है। तुम आंधी को बुरा ना कहो और अल्लाह ताला से इसकी खैर का सवाल करो और इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगो। एक बंदे ने आंधी के ऊपर लानत की, जैसे वो होता ना बुरा भला कहना शुरू जाते हैं, ये आंधी क्यों आ गई, उसके ऊपर लानत। तो आपने फरमाया आंधी पे लानत ना करो, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म के ताबे है, अल्लाह के हुक्म से चलती। जो शख्स किसी ऐसी चीज पे लानत करता है जो इस लानत की हकदार नहीं होती, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो लानत उसी के ऊपर पड़ जाती है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंधी को बुरा ना कहो, बल्कि जब तुम में से कोई कोई नागवार चीज देखे तो फिर दुआ करे उसकी खैर का, दुआ उसकी में जो खैर है उसकी दुआ करे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंधियां चलती थी, ऐसे तेज झक्कड़ चलते थे, हवाएं चलती थी, तो फिर ये दुआ मांगा करते थे। हम सबको इस दुआ को याद कर लेना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा। देखिए आसानी दुआ है, अल्लाह मैं इसकी खैर चाहता हूँ और जो इसके अंदर है उसकी भी खैर, व खैर मा अरसलता बिही और उसकी भी खैर जिसके साथ तूने इसको भेजा है। वाउजीबी का मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा अरसलता बिही, इसकी इसके शर से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। और अल्लाह जो इसमें है वो जो बुराई इसके अंदर जो भी इसके अंदर हो शर उससे भी, और जिस चीज के साथ ये भेजी गई है उसकी बुराई से भी पनाह में आता हूँ। तो आयशा रजी अल्लाह तआला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछती हैं कि या रसूलल्लाह आप इतने खौफजदा हो जाते हैं, लोग खुश होते हैं जब बादल आते हैं, आप खौफजदा हो जाते हैं। तो आपने यही फरमा, कौमे हूद ने भी अपनी बादल देखे थे तो वो खुश हो गए थे कि ये हमारे ऊपर बरसेंगे, हमारे ऊपर बारिश लाएंगे। तो फिर देखो उनका क्या हाल है। तो रीह जो होती है ना, रीह याद रखे, रीह ऐसी हवा होती है, अनलेस उसके साथ कुछ खैर या तय्यब रीह का वर्ड आया, लेकिन रीह वो होती है जो नुकसानदेह होती है, जो अजाब लेकर आती है। ठीक है, जो रिया होती है या के बाद अलिफ, वो अच्छी हवा होती है जो खुशखबरी लाती है, रहमत की हवा होती है। तो अल्लाह ताला ने तो अभी अपने हवा के खजानों में से कुछ ज्यादा भेजी नहीं थी हवा, आद के लिए सिर्फ इतनी हवा खोली गई थी। हदीस में आता है जितनी अंगूठी का हलका हो, ये आपकी रिंग है ना, इतनी सी बैल के नथने के बराबर इतनी सी हवा खोली थी। हाँ अंगूठी तो आपको नजर आती है, उतनी सी हवा, इतनी सी सिर्फ खोली थी। उन्होंने क्या सोचा और क्या हुआ। बाज दफा इंसान किसी चीज को अपने लिए खैर समझता है उसमें शर होता है, और बाज दफा इंसान किसी चीज में शर समझता है और उसमें खैर होती है। हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है, क्योंकि हर चीज का मामला क्या है, ये अगली आयत, तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बि अम्री रब्बी, कि हलाक करती है हर चीज को अपने रब के हुक्म से। चलता किसका हुक्म है, हवा वो ही हवा खैर बन जाए तो भी रब का हुक्म होगा तो खैर बनेगी, वो ही हवा शर बन जाए रब का हुक्म होगा तो शर बन जाएगी। चीज एक ही है,
अल्लाह चाहे तो उसको खैर कर दे, अल्लाह चाहे तो उसको शर कर दे। तो असल क्या मामला क्या है, अमरी रब्बी, रब का जो अमर है ना वो मैटर करता है। आप देखें एक ही औलाद है, एक को मिली ऐसी नाफरमान के माँ बाप जो है रोने लग गए, जैसे हमने पिछले ही सबक के अंदर पढ़ा था कि उन्होंने कहा वही लाका है तेरी हलाकत, तेरी बर्बादी, तेरा बेड़ा गर्क हो, तू क्या बातें कर रहा है, जो माँ बाप के लिए तकलीफ का बायस बन गई। एक ही औलाद है, वो माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बन गई, सदका जारिया बन गई। एक ही हवा होती है, रहमत की बारिश ले आती है, जमीन को हरा भरा कर देती है, इंसानों की प्यास बुझा देती है। एक ही हवा है जो अजाब बन के आ गई। तो फर्क कहाँ पे होता है, फर्क है अमरी रब्बी में। इस बात को ही नहीं हम समझते कि असल चीज अल्लाह का अमर है, अल्लाह का अमर है जो चीज को अच्छा या बुरा कर सकता है। हम चीज के ऊपर गौर करते रहते हैं और उसको सोचते रहते हैं ये चीज बुरी, ये चीज अच्छी, ये चीज ऐसी, ये चीज वैसी। नहीं, वो चीज नहीं है। अमरे रब को देखें और उससे पहचाने अपने रब को कि अल्लाह ताला चाहेगा तो मेरे लिए चीज ये खैर बन सकती है, अल्लाह ना चाहे तो मेरे लिए ये चीज शर बन जाए। तो अल्लाह के अमर को समझा करें कि सब ताकत मेरे रब के हाथ में, सब ताकत। हम समझ रहे हैं ये तो चीज खैर ही होती है ना, इससे खैर ही निकलेगी ना, और इससे क्या शर हो सकता है, हवा ही है ना, कोई सोच ही नहीं सकता इससे कोई शर भी हो। बादल है, बादल तो बड़ी अच्छी चीज होती है, इससे जैसे आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोग खुश होते हैं इसको देख के ना, तो वाकई सब खुश ही होते हैं, लेकिन वो भी शर बन सकता है। अगर अमरी रब है कि वो शर बने तो वो शर बन जाए। आप देख लेना मूसा अलैहि सलाम के पास आसा था, वो ही आसा वो फरमा रहे कि मैं पत्ते झाड़ता हूँ, इससे बकरियों को गिराता हूँ, मैं टेक भी लगाता हूँ, वो ही आसा कैसे सांप बन गया। अल्लाह ताला है जिसको जो चीज कर दे, क्या बना दे किसी चीज को। लोगों का पता चलता है सवारी खरीदी, इतनी खुशी हुई, वे बाइक खरीदी है बहुत खुशी के साथ, बड़ा शौक था, या किसी ने स्पोर्ट्स कार खरीदी है, पता नहीं वो ही उसकी मौत का काम है, उसी में उसको मौत आ जानी, उसकी गलत खुशियां कर रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें इंसान सोचता है ये बड़ी अच्छी है, उसके अंदर इशारा है, क्योंकि अल्लाह ने डाल दिया उसके अंदर, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बना दिया उसके लिए। इसीलिए हर चीज रहमत भी हो सकती है, जहमत भी हो सकती है। इंसान का पैसा भी, पैसे तो खैर है, इसको खैर कहा गया, लेकिन उसके लिए अजाब का सबब बन सकता है। तो ये अमरे रब होता है, अमरे रब को पहचाने, इसीलिए अल्लाह के आगे झुके। कोई चीज इटसेल्फ ये ताकत नहीं रखती कि वो मेरे लिए खैर या शर का बायस बने, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। समझ आई बात। तो हलाक कर रही थी हर चीज को, यानी मैंने आपको बताया ना, कोई चीज उसने छोड़ी ही नहीं, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ा। अब उनमें बेबीज भी होंगे, उनके अंदर बूढ़े भी होंगे, उनके अंदर ताकतवर भी होंगे, कमजोर भी होंगे, किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि किसी को छोड़ना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। वो ऐसे हो गए थे कि उनके मकानों के जो उनके रहने की जगह थी उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिस चीज के ऊपर से गुजरी उसको तहस नहस कर दी, कोई जी रू, कोई सांस लेने वाला बाकी नहीं बचा, सिर्फ पटकती नहीं थी, उड़ा उड़ा के ले जाती थी। और क्या हवा में ये ताकत है, नहीं, ये अमरे रब था। अल्लाह ही चाहे तो हवाओं को जिधर को चाहे रुख फेर दे, अल्लाह ही चाहे तो उनकी स्पीड को जितना चाहे तेज कर दे, स्लो कर दे, हम इस पे तवज्जो नहीं देते। हवा चल रही हो, हाँ बड़ी अच्छी हवा चल रही, अल्लाह तूने इतनी अच्छी हवा चला दी, अल्लाह तूने हमारे लिए ये राहत का पैगाम कर दिया, सुकून का बायस बना दिया, वो ही हवा तेज वो कर दे तो फिर मुसीबत बढ़ जाए, हम फिर भागते अंदर की तरफ जब ऐसी आंधी आती है। हमने देखा ना कई जगह पे हमें वीडियोस भी आती हैं, वो आंधियां उड़ा उड़ा के चीजों को उलट रही हैं, गाड़ियां भी उलट देती हैं, ये तो हम अपने सामने देखते हैं, लोग पोल्स पकड़ के खड़े में उड़े चले जा रहे हैं, उनकी इमारतों के सिवा सब खत्म हो गए। फास भी अमरी रबे फास बहुला युरा इल्ला मसाकिन, तो उनके सिर्फ मस्कन रह गए थे, घर रह गए थे, कुछ और नहीं नजर आता था, सिर्फ उनके घर नजर आ रहे थे बस, और कुछ नहीं था, सब रेत के नीचे पूरा इलाका। कदालिक नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन, ये होता है बदला मुजरिम कौम का, इस तरह अल्लाह ताला बदला लेता है मुजरिम कौम से जो नाफरमान है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मुजरिम होना दुनिया में, किसी के मुजरिम हो किसी मुल्क के तो शायद बच सकते हो कि कहीं जाके छुप जाएं, कहीं भाग जाएं, कहीं किसी के किसी और मुल्क में जाके पनाह ले लेते हैं, असाइलम ले लेते हैं वहां पे, मतलब कि कोई हमें पकड़ ना सके। तो दुनिया में तो मुजरिम वाकई कहीं भाग सकते हैं या मार ही जाते हैं बाज दफा मुजरिम, और फिर क्या पकड़ेंगे उनको, लेकिन अल्लाह के जो मुजरिम होते हैं ना, वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। फिर भी हमारा ये हाल होता है कि इंसान दुनिया के कानून को तोड़ते हुए तो डरता है कि हाय मुजरिम कहलाऊंगा और हाय फिर मेरी पकड़ ना हो जाए, लेकिन अल्लाह के कानून को तोड़ते हुए कभी नहीं डरता। ये मेरा अल्लाह मुझे पकड़ लेगा तो क्या होगा, मैं उसका मुजरिम बन गया तो क्या होगा, फिर तो कोई भागने की जगह भी नहीं, फिर तो कोई छुपने की जगह भी नहीं, फिर तो कोई पनाह देने वाला भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरह हम जजा देते हैं मुजरिम कौम को। अल्लाह हु अकबर। अबू दरदा दमिश्क में खिताब करते हुए कहते हैं, ऐ दमिश्क वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती कि तुम वो जमा करते हो जो खाते नहीं, यानी खा ही नहीं सकते, और ऐसी इमारतें बनाते हो जिसमें तुम रहोगे नहीं, यानी इतनी आलीशान, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी कि उसके अंदर रह ही नहीं सकते, और तुम उम्मीद रखते हो उसकी जितना तुम जी नहीं सकोगे, यानी लंबी लंबी प्लानिंग्स हैं, उतना जीना भी नहीं है। तुमसे पहले के लोग जमा करते थे, फिर समेट समेट के रखते थे और बहुत मजबूत बनाते थे, उम्मीदें लगाते थे और लंबी उम्मीदें लगाते थे, तो फिर जो उन्होंने जमा किया सब बर्बाद हो गया और उनके घर ही उनकी कब्रें बन गए। जैसे ऊपर होता है ना, जलजले आते हैं, ऊपर ही घर गिर जाता है और अंदर ही दब जाते हैं लोग, और इनकी ख्वाहिशात उनके लिए धोखे का सामान बन गई। सुनो, आद ने आदन और ओमान के दरमियान सारा इलाका अपने कब्जे में किया हुआ था, उनके लश्कर भी थे, उनके घुड़सवार भी थे, तो कौन मुझसे आद की मीरास को 2 दिरहम ने खरीदे का। अल्लाह अकबर, कौन है जा आज उनकी जायदादों को 2 दिरहम में भी, 2 दिरहम तो कुछ भी नहीं होते, 2 दिरहम दे के ही खरीद ले, कोई उनका खरीदार नहीं। वो जो इतने अपने आप को बड़ा समझते थे, जो इतना अपने आप को चीजें समझते थे, जो कहते थे हमारे जैसा ही कोई नहीं, जो समझते थे कि उनके कोई खत्म नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा, ले आओ अजाब, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये कहा करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर इबरत का निशान बना दिया। आज भी उनका खरीदार उन जमीनों का कोई नहीं, ये तो अबू दरदा अपने जमाने में कह रहे हैं, हजारों साल गुजर कर कोई खरीदार नहीं, वहां पे कुछ उगता नहीं, कुछ बना नहीं सकते, कोई चीज ठहर ही नहीं सकती, क्या इन निशानियों से हमारी आंखें नहीं खुलती कि अल्लाह के मुजरिमों का अंजाम क्या होता है। आम जुर्म करते हैं, कानून तोड़ते हैं अल्लाह का, और बेबाकी से तोड़ते हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, धड़ल्ले से करते हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसके उलट करते हैं, और बड़ी अपने आप को चीज समझते हैं कि मुझे कौन कुछ कह सकता है, मुझे कौन पकड़ सकता है, अपने आप को मुजरिम नहीं गर्दानते। अगर अपने आप को मुजरिम समझते तो रोते हम अल्लाह के आगे, अगर हमें जरा पशेमानी होती तो हमें चैन ना आता रातों को, हम खड़े हो जाते अल्लाह के हजूर और माफिया मांगते। अगर हम अल्लाह के मुजरिम खुद को समझते तो हम कभी ना डर ना होते, अगर हम अपने आप को अल्लाह के मुजरिम समझते
तो हम अल्लाह की फरमा बरदारी से और उसके कलाम से कभी दूर ना भागते, बल्कि आते अल्लाह की तरफ, बढ़ते उसकी तरफ, झुकते उसकी तरफ, डरते उससे, उसके कलाम को पढ़ते तो रोते, रातों को हमें चैन ना आता, मगर देख लो हम कैसे लोग हैं, क्या अल्लाह के कानून को तोड़ते भी हैं और फिर खुद को मुजरिम समझते भी नहीं, नहीं समझते हमने कुछ गलत किया, बल्कि सब खुश हैं इस बात पे कि हम ठीक ही तो हैं, जैसे ये कौमें थीं जिन्होंने अपने आप को समझा कि हम सही तो हैं, हम क्या गलत हैं, इसीलिए तो आराम से मांगते थे लाओ अजाब ना, अगर यानी हम पे अजाब कहाँ आएगा, हम क्या गलत हैं। आज का इंसान भी बड़ा ही नादान है कि वो अपने आप को अल्लाह की पकड़ से बाहर समझता है और ये समझता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, करके भी समझता है अपने अल्लाह ताला की नाफरमानियां करके भी समझता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, लोग तो मुझसे भी ज्यादा बुरा करते हैं, मैं क्या गलत हूं, लोग तो मेरे से भी ज्यादा गलत है। वलकद मक्कन्नाहुम फीमा इन मक्कन्नाकुम फी, अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को फरमाया कि और अलबत्त है कि बसाया हमने उनको यानी कि इनको आद को उसमें जो नहीं बसाया हमने तुमको उसमें, यानी वो शानो शौकत, वो दुनिया की रेल पेल, वो मजबूती, वो इमारतें, वो रहन सहन, वो तहजीब उनकी, वो तो बहुत आगे थे, तुम तो कुछ भी नहीं उनके मुकाबले में। तो आप देख लेना कुरैशी मक्का के पास कौन से क्या चीज थी, उन्होंने तो ना कुछ ऐसे कोई इमारतें, ना आज भी देखे कुछ भी नहीं, वहां पे तो कुछ भी नहीं था, एक काबा के अलावा वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके ऊपर ये बड़ा फखर करते या कुछ कहते, ना खुद ऐसे कोई बहुत बड़े जायंट्स थे कि इतने उनको देख के देव हैकल हों के उनको देख के लोग डरे, ऐसा भी कुछ नहीं था। अल्लाह तला ने फरमाया तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, वो हमने जैसा उनको बसाया था, जैसे उनको कुदरत दी थी ना, तुम्हारे पास तो वैसी कोई चीज भी नहीं, और आज तक भी मैंने आपको ये बता दी ना, आपका इंटरनेट और बिजली चली जाए कुछ भी नहीं है, दुनिया एट हॉल्ट, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपके जहाज उड़ेंगे, ना आपके स्टोर चल सकते हैं, ना आपके दफ्तर चल सकते हैं, ना आपका कोई कारोबार चल सकता है, ना कोई काम कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हत्ता तो हमारे दरवाजे भी इस तरह से ही खुलते हैं, हमारे घर की चीजें सारी उन चीजों से चलती हैं, बाज जगह तो चूल्हे भी इलेक्ट्रिक के हैं, इंसान बिल्कुल देख ले, पेट्रोल डालना है गाड़ी में तो वो भी इलेक्ट्रिक से ही है, ना आपकी गाड़ियां चल सकती, कुछ भी नहीं, हम तो इतने ज्यादा मोहताज हैं, इतने हमारे हाथ पैर समझ लो तोड़ के हमने अपने आप को रखा हुआ है, हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो लोग उनको कहा गया कि ऐ कुरैश मक्का तुम क्या चीज हो, जितनी नेमतें हमने उनको दे रखी थी, और चार चीजों में तो वो खास तौर पे उनका नाम आता है कि उनको मवेशी दिए हुए थे, लाइफ स्टॉक, और उनके बेटे थे यानी उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी था, बागात थे यानी उनके पास रिस्क के भी फरवानी थी, बाग है तो इसका मतलब है कि रिस्क है ना इतना, और हरियाली भी इसका मतलब, और चश्मे थे, ये चार चीजें उनके लिए पास बहुत थी, चश्मे तो पानी है तो इसका मतलब है कि उनका पानी है तो जाहिर है ग्रीनरी भी होगी, मौसम भी अच्छा होगा, और बाग भी होंगे और खेतियां भी होंगी, तो दुनियावी एतबार से जिसमानी तौर पे कदखाट में, ताकत में और समझ बूझ में वो बहुत आगे थे, तभी तो उन्होंने देखे ये उनके पास अकल समझ थी तो इतने इतने मॉन्यूमेंट्स बनाए ना उन्होंने, लेकिन अल्लाह ताला के आगे कुछ खड़े ना हो सके, उनके रिसोर्सेज उनको बचा ना सके, वजालनालहुम समा हुआ अबसार हुआ अफईदा, और हमने उनके लिए बनाए थे कान भी, आंखें भी, दिल भी, ये किस लिए दिए थे, अल्लाह ताला ने बताया कि हमने उनके आंख कान और दिल दिए थे, लेकिन वो कैसे थे, फमा अगना अनहुम समउहुम, तो उन्होंने काम नहीं लिया कानों से और अबसारुहुम और अपनी निगाहों से,
वला अफ़ीदा तुम, और ना उन अपने दिलों से मिन शेई इन कुछ भी काम ना लिया। जब वो हमारी आयात के अंदर झगड़ते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं काम लिया। लिया तो था उन्होंने, वो इतने बड़े बड़े यादगारें नहीं बना ली थी, इतने बड़े बड़े सतून नहीं खड़े कर दिए थे, किले खड़े किए हुए थे और तरक्की की हुई थी, तो लिया ही था ना। हम तो ये सोचते हैं ना, हमारे नजदीक तो देखें आंखों कानों का यही काम है कि भाई, और दिमाग होना और ये होना, इसका मतलब यही है कि हम बड़ी दुनिया में तरक्की कर लें। देखो वाह वाह क्या तरक्की की इन्होंने, वाह वाह क्या इन्होंने अपनी रिसोर्सेस से काम लिया, क्या जबरदस्त चीज है ये कौम, कितनी बड़ी, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत हासिल कर ली। तो हम सोचते हैं कि इन्होंने, इनके दिमाग देखो कितने तेज है, इन्होंने देखो कितनी तरक्की की है। हमें लगता है कि इन्होंने वाकई अपनी इन चीजों से बहुत फायदा उठाया, जो अल्लाह ताला ने इनको जो कान आंखें समझ दी है, इससे बड़ा इन्होंने फायदा उठाया। हालांकि अल्लाह के नजदीक कोई भी फायदा नहीं उन्होंने उठाया अगर उन्होंने इन कान आंखों और दिल के होने के बावजूद अल्लाह की आयात के अंदर झगड़े किए, उनका इनकार किया और उनको नहीं माना, तो इसका मतलब आंखों से उन्होंने कुछ नहीं फायदा उठाया, कानों से कुछ फायदा नहीं उठाया, दिल में कोई बात ही नहीं उनकी गई, दिल से कुछ फायदा नहीं उठाया। तो अल्लाह के नजदीक आप अपनी आंखों से, कानों से, दिल से फायदा उठाने वाले तब हैं, और इन चीजों को अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है कि ये आंखें रब की आयात को देखें, चाहे वो कायनात में, चाहे वो कुरान में, इनको देखें, इनसे रब को पहचाने। कान है इसके सुने और रब को पहचाने, और दिल है इनके अंदर बात को लेकर जाएं, एक कान से सुन के दूसरे से ना निकाल दे, दिल में भी लेकर जाएं, दिल में लगे बात, दिल में जगह पकड़े बात, तब वह समझ लें कि आपने इन चीजों से फायदा उठाया जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। वरना चाहे आप कितनी टेक्नोलॉजी के माहिर हो जाएं, आपने कितनी डिग्रियां कर ली हैं, इन आंखों से पढ़ पढ़ के आपने किताबें इधर रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी किताबें आपने पढ़ी हुई हैं, इन कानों से आपने कितने लेक्चर सुने हुए हैं, बड़े बड़े साइंसदान आप बन गए, और बड़ी आपको समझ भी आ गई, दिल भी आपका ऐसा, सब चीजें समझ आ गई, सारे उलूम आपने समझ ली हैं, आप अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनसे काम नहीं लिया। अब देख लें हमारा काम लेना, हम क्या समझते हैं कि काम लेना क्या होता है, और अल्लाह ताला के नजदीक काम लेना क्या होता है। अल्लाह के नजदीक काम लेना ये है कि आप इन फैकल्टी से अपनी, इन अपने आज़ा के साथ अल्लाह ताला को पहचाने, उसकी आयात को समझें, उसकी तरफ कदम को बढ़ाएं, ये है इनसे काम लेना। इसके लिए अल्लाह ताला ने बेसिकली दिया, ये मना नहीं किया कि आंखों से कुछ ना देखो, अंधे बन के बैठ जाओ, सिर्फ कुरान पढ़ो, कानों से ये नहीं कहा कोई भी बात ना सुनो, लेकिन बेसिक इनको इसलिए दिया, अगर इनसे असल काम ही ना किया तो फिर क्या किया। आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी को सारा दिन चमकाती रहते हैं, सारा दिन धोते रहते हैं, उसके टायर धो लिया, अंदर से धो लिया, बाहर से धो लिया, बड़ी इसकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आप इस गाड़ी को कभी बाहर ही नहीं निकालते, कभी इसमें सवार ही नहीं होके कहीं गए, ये गाड़ी आपको जहां आपने पहुंचना है वहां ही नहीं लेकर गई, तो फायदा क्या इस गाड़ी का, ये तो एक खोखला ढांचा है जो खड़ा हुआ है। अब आप उसकी कितने भी कहते जाएं कि देखो कितना मैंने चमकाया हुआ है, देखो मैंने कितना इसको अच्छा रखा हुआ है, इसी तरह ये मिसाल ले लें कि देखें आप आंखों से आप देख रहे हैं, आप पढ़े हैं, आप उलूम और पढ़ रहे हैं, आप दुनिया को भी देखें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपका असल काम तो यही था कि आंखों से कुछ अल्लाह के कलाम को तो पढ़ते, उसकी आयात को तो देखते, उसकी बात को तो समझते, सुनते तो सही, दिल में तो लेकर जाते, दिल समझ के लिए होता है, दिल समझता है चीज को, इसको समझ तो हासिल करते, वो ही ना किया तो आपने अब पूरी दुनिया आप घूम आए हैं और पूरी दुनिया के आपने अलूम ले लिए, और आप वो कहते हैं हम ट्रैवल करके जी मैंने सारी दुनिया देख ली, और तुमने दुनिया देख ली, तुमने अल्लाह के कलाम को ना देखा और उसकी निशानियों से उसको ना समझा, तो तुम उसके नजदीक अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, और दिल नहीं है तुम्हारे पास। अल्लाह ताला ने फरमाया उनके पास आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके पास कान है लेकिन वो सुनते नहीं, उनके पास दिल है लेकिन वो समझते नहीं, तो फिर इंसान अल्लाह ताला के नजदीक ऐसा हो जाता है, उलाय का कल अनाम, वो तो चौपायों की तरह है, बल हम अदल, बल्कि उनके से ज्यादा गए गुजरे हैं, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो गए, अगर तुमने इन आंखों से ये फायदा ना उठा,
मैंने जैसे आपको गाड़ी की मिसाल दी, वो गाड़ी इसलिए थी, उसका मकसद क्या था, आपको यहां से वहां पहुंचा दे, और आपने उसे वही ना काम लिया। अब वो कितनी खूबसूरत लग रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। इस्लामपुर दुनिया हम घूम आए, सारी दुनिया के हमने वेकेशंस कर ली, हमने अल्लाह ताला को ना पहचाना तो हमने इन कामों से कोई काम, इन आंखों से कोई काम नहीं लिया, इन कानों से कोई काम नहीं लिया। हम दुनिया जहान की न्यूज सुन रहे हैं, तबसरे सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, क्या क्या नहीं सुन रहे इन कानों से, चुगलियां और गिबतें सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन क्या नहीं सुना, सिर्फ अल्लाह का कलाम ही ना सुन के दिया, अल्लाह की बात ही ना सुन के दी। अल्लाह के नजदीक तो बहरे हो, समझ लो कान है या नहीं है एक बराबर हो, दिल है या नहीं है एक बराबर। फिर भी आज कितने लोग हैं ये समझते हैं कि ये कान अल्लाह ने किस मकसद के लिए दी, आंखें किस मकसद के लिए दी, ये दिल मेरे पास किस बात के लिए, मैंने अल्लाह के कलाम को ही ना समझा तो क्या है ये मेरा दिल। सारी सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, 70 70 साल के, 60 60 साल के हो जाते हैं, फिर भी इन आजा से, ये आजा दुनिया देख देख कमजोर हो गए, आंखें कमजोर हो गई, कानों से सुनता नहीं, सिर्फ दुनिया की बातें, अब तो कुछ समझ भी नहीं आता। लेकिन ये दिन ना आके दिया कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की निशानियों को देखते या उसकी आयात को समझते, उन्होंने भी नहीं किया था, और आज कितनी दुनिया इसी रास्ते पे। ये कोई नई कहानी नहीं है आद की, ये तो कहानी चलती ही जा रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ऐसे लोग थे और आज भी हैं, इनको तो कहा गया, वो उनके बारे में तो ये कहा गया था कि वह इजा बतश तुम, बतश तुम जब्बारीन, जब वो पकड़ते थे ना, जब तुम पकड़ते तो पकड़ते जब्बार बन के, इतना सख्त पकड़ते ना, ना किसी को नहीं, सजाएं ऐसी देते थे, ऐसी पकड़ करते थे कि खुदा की पनाह, जब्बार बन के पकड़ते थे, और ऐसे अपने आप को समझते थे कि हम कितने कवि हैं, हम क्या चीज है, खुद पसंदी का शिकार थे ना, उनको बहुत अपने आप के अंदर बड़ा मान था, इसीलिए तो यादगारें भी ऐसी ऐसी बनाई हुई जो आज तक खड़ी हुई हैं, रेत के नीचे खड़े हुए मोहल्लात और उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके सतून आज तक खड़े हैं उस शहर में, तो शहरों को भी उन्होंने ऐसे आबाद किया, दूर दूर तक उनकी मुमलिकत थी, ताकत भी बहुत थी, लेकिन ना अकल ना समझ ना कोई भी चीज अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल की, अल्लाह की आयात का फिर भी इनकार ही करने वाले थे। उन्होंने कुछ काम ना लिया कि अगर उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार ही करना था, तो ये बात है यहाँ पे कही गई कि कुछ काम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो अल्लाह की आयात का इनकार कर दिया, इसका मतलब है कि इनसे काम लेना क्या था, कि अल्लाह की आयात को मानते, उनके अंदर बहसे ना करते, उनको रिजेक्ट ना करते। तो हम में से कितने हैं जो फायदा ले रहे हैं, अल्लाह अकबर, या फिर ये कान और आंखें और दिल कहीं और ही, समझ कहीं और ही यूज हो रही है, आंखें और कान कहीं और ही यूज हो रहे हैं। हाँ, कितने लोग हैं हम में से, वहां कभी मा कानू भी यस्तहज़ीऊन, तो फिर घेर लिया उनको जिसका वो मजाक उड़ाते थे, वो अजाब उनको आ लिया। यहां तक आद की स्टोरी मुकम्मल हुई। एक वो जिन्होंने इंसान होते हुए, अकल होते हुए, समझ होते हुए, अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकात में अशरफ अल्लाह ताला ने टॉप पे इंसान को बनाया। किस वजह से वो अशरफ है, अपनी ताकत की वजह से नहीं, अपनी जिस्मानी साख्त की वजह से नहीं, अपनी अकल की वजह से। उन्होंने अपनी अकल ना इस्तेमाल की, समझ ना इस्तेमाल की, ये कान आंखें हैं ना, ये डोर्स हैं अकल के, इनके जरिए अकल तक बात जाती, आंखें देखती हैं अकल प्रोसेस करती, कान सुनते हैं अकल प्रोसेस करती, दिल के अंदर बात जाती समझ आती, ये इंसान की बड़ाई और उसकी इज्जत, उसका ऑनर ये है कि वो बहुत अकलमंद है। लेकिन इंसान हो के भी कुछ लोगों ने अपनी ना समझ इस्तेमाल की, ना अपनी कानों आंखों को सही इस्तेमाल किया, ना आपने दिल से समझ हासिल की और बर्बाद हो गए। उनके मुकाबले में एक वो भी मखलूक है जो कि इतनी समझ नहीं रखती, अल्लाह ताला ने उनकी आगे बात की है कि उन्होंने हिदायत पा ली।